एहेस्केल अध्याय 16। एहेस्केल अध्याय 16 के आरंभ में एहेस्केल कहता है, एहेस्केल अध्याय 16 पद 1 और 2, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे। परमेश्वर यरूशलेम को संबोधित करके कहता है, यरूशलेम से अर्थ है उसके निवासियों से। कोई भी नगर अपने आप में भला और बुरा नहीं होता है, ये तो निवासी होते हैं जो भला या बुरा आचरण रखते हैं। अतः परमेश्वर यरूशलेम वासियों से कह रहा है। एहेस्केल अध्याय 16 पद 3, और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई, तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हितिन थी। इससे पहले कि इसराइल के वंशज प्रतिज्ञा के देश में आए, वहां के मूल जातियां अमोरी और हिती थी। अतः उस स्थान के निवासी अमोरी पिता स्वरूप तथा हिती माता स्वरूप थे, ये दो जातियां वहां की मूल निवासी थी। एहेस्केल अध्याय 16 पद 4, और तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया और ना तो कुछ कपड़ों में लपेटी गई। उनके समाज में जब किसी बच्चे का जन्म होता था तब उसे सबसे पहले नहलाया जाता, तदोपरांत उस पर नमक लगाया जाता था। इसका प्रमुख उद्देश्य होता था कि बच्चे की देह पर उपस्थित बैक्टीरिया का नाश किया जाए। बैक्टीरिया मारने के लिए नमक एक बहुत ही अच्छा कीटाणुनाशक पदार्थ है। एक बार हम एक अभियान दल के साथ थे जो वर्जिन ग्वाडुला खदान की खोज कर रहा था। वे चट्टानों को फोड़ रहे थे। इस काम में एक कर्मी के हाथ में चट्टान के टुकड़े से चोट लग गई। वहां एक खदान परिवेशक नमक का पैकेट लेकर आया और उस व्यक्ति की चोट पर नमक लगा दिया। वो व्यक्ति तड़प उठा। खदान पर्यवेशक कहने लगा, मैं नमक लिए बिना घर से कभी नहीं निकलता हूं। उसने हमें बताया, ये एक बहुत अच्छा कीटाणुनाशक पदार्थ है और संक्रमण से भी बचाता है तथा ठीक भी जल्दी कर देता है। इस प्रकार वे नवजात शिशु पर नमक लगाकर उसे कपड़ों में लपेट देते थे। अतः परमेश्वर कहता है कि जब यरूशलेम का जन्म हुआ तब ऐसा कुछ नहीं किया गया था, उसकी नाल भी नहीं काटी गई थी, तुम्हें ना नहलाया गया, ना नमक लगाया गया, ना कपड़ों में लपेटा गया था। एहेस्केल अध्याय 16 पद 5 और 6, किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तो घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी, और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हां, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। परमेश्वर कहता है कि तुम तो निर्वसित थे और अशुद्ध थे, परंतु मैंने आकर ऐसी स्थिति में भी तुमसे कहा, जीते रहो। यहां ध्यान देने योग्य बात है पद 6, जो एक प्रकार से उन लोगों का आशीष वचन था, या यूं कहे मंत्र था, जो खून के बहने को रोकने के लिए कहा जाता था। यहां वचन के कहने से तो लहू बहना रुकता नहीं, परंतु परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा अवश्य ऐसा होता है। आज इस मंत्रोच्चरण का चलन नहीं रहा है। परमेश्वर यहां यरूशलेम में प्रवेश करने वाले वंशजों के बारे में कह रहा है कि उसने स्वयं ही उन्हें पुकारा था। एहेस्केल अध्याय 16 पद 7 और 8। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के नाई बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडैल हुई और तेरे बाल बड़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस प्रकार वो देश विकसित हुआ और परमेश्वर उनके मध्य प्रेम प्राप्त करने आया और उनसे वाचा बांधी जो विवाह का प्रतीक थी। इस वाचा के अधीन परमेश्वर ने उन्हें अपना लिया, वो उसके लिए दुल्हन स्वरूप हो गई। एहेस्केल अध्याय 16 पद 9 से लेकर 14 तक। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरे नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभयमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर इसराइल के लिए अपने कामों के बारे में कहता है, उन्हें महान, रमणीय, आकर्षक और सुंदरता में सिद्ध बनाने के लिए उसके आत्मा ने किए थे। यहां ध्यान दीजिए कि ये सब मसीह और कलीसिया के संबंधों का भावी रूप है। मसीह जब पहली बार हमारे मध्य में आया था तब हम अपने पापों के कारण भ्रष्ट अवस्था में थे। जैसा पौलुस एफिसियों को लिखे पत्र अध्याय 2 में कहता है, तुम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मृतक थे और इस संसार की रीति पर चलते थे, उसने तुम्हें जीवन दान दिया। यहां चलने से अर्थ है भटकना, अर्थात निरुद्देश्य घूमते रहना। यीशु के आगमन से पूर्व हमारा जीवन लक्ष्यहीन था। रीति के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है मौसम के अनुरूप आचरण करना, जिसका यहां अर्थ है जैसा संसार चलता था तुम भी चलते थे, संसार के प्रवाह में बह रहे थे। आपका स्वभाव ही ऐसा था, पौलुस कहता है, क्रोध की संतान, क्योंकि आप शारीरिक लालसाओं और मन की अभिलाषाओं का पालन कर रहे थे, परंतु मसीह ने हमें धोकर साफ किया और अब हम शुद्ध हैं। यीशु ने कहा, मेरे उन शब्दों से जो मैंने तुमसे कहे, अर्थात परमेश्वर के वचनों द्वारा धोया जाना। मसीह यीशु के लहू द्वारा हमारे जीवन को धोया जाता है। मैंने तुम्हारी गंदगी को धोया, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे सिर के ऊपर तेल मला। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। परमेश्वर ने इस प्रकार घोषणा की, मैंने तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए, फटी पुरानी टाट नहीं, अच्छे कपड़े अच्छी देखभाल को दर्शाते हैं और परमेश्वर ने हमारी अच्छी देखभाल की। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। सुइसों का चमड़ा, इस शब्द के मूल इब्रानी शब्द का अर्थ हमारे लिए स्पष्ट नहीं है, परंतु ये तो निश्चित है कि ये एक कोमल चमड़ा होता था जिससे जामुनी रंग में रंगा जाता था। ये जूता युवतियों का मन पसंद होता था और ये जूते केवल बड़ी बड़ी पार्टियों में पहने जाते थे, वे मजदूरी और दैनिक व्यवहार के लिए नहीं थे। मैंने तुझे रेशमी वस्त्र उड़ाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 2 में वो कहता है, वो उस दुल्हन के समान थी जो सिंगार किए हो। रेशमी वस्त्र पवित्र जन्म का प्रतीक है। हमारी धार्मिकता मसीह यीशु की धार्मिकता है जिसे हम में विश्वास के द्वारा रोपित किया गया है। आज मेरी धार्मिकता मेरी अपनी नहीं है, मैं अपनी धार्मिकता को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। यदि हम परमेश्वर के सामने अपनी अच्छाइयों को और धार्मिकता को लेकर खड़े हों तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, जैसे कुछ कुत्ते मृदु स्वभाव के होते हैं तो कुछ खूंखार जिनके पास जाने से ही आप डरते हैं। मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं, उनका तौर तरीका ही कुछ ऐसा होता है जैसा कि उनके पेट में तकलीफ हो। वे उग्र स्वभाव के होते हैं और गुर्राते से रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने आता है तब मृदु स्वभाव के व्यक्ति से बुरा नहीं होता है, चाहे वो मृदु व्यक्ति कितना भी सरल एवं शांत स्वभाव का हो। हम अलग अलग स्वभाव रखते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने किसी का मूल्य नहीं है। परमेश्वर के समक्ष हमारा ग्रहण योग्य स्वभाव रेशमी वस्त्रावरण ही है और वो हमें मसीह में विश्वास के द्वारा उसी ने दिया है। अब होता यह है कि जिस मनुष्य को स्वभाव की समस्या है वो अपनी आवश्यकता को जानता और समझता है कि उसे प्रभु के सामने आना है, क्योंकि वो जानता है कि वो पापी है। परंतु वो जो भला ईमानदार और निष्ठावान है सोचता है कि उसे परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार वो प्रभु से अधिक दूर रहता है। इसी कारण बहुत से अच्छे लोग नरक जाते हैं और बहुत से बुरे लोग स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले वस्त्रों की नाई है। हम तो देखते हैं कि परमेश्वर हमें चुनने के बाद धोता है, तेल मलता, वस्त्रावरण कराता, कंगन पहनाता, गले में हार पहनाता है, माथे पर आभूषण पहनाता है, कानों में कुंडल बाली पहनाता है तथा सिर मुकुट पहनाता है। मैं तो इनका अर्थानुवाद आत्मा का फल कहकर करता हूं, जिसका श्रृंगार पत्रस के शब्दों में आभूषण और केश श्रृंगार न होकर आत्मा का सौंदर्यकरण है, अर्थात दीन एवं मृदुल आत्मा जो परमेश्वर की दृष्टि में अत्यधिक कीमती है। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 3 और 4, तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसी मनुष्य का सच्चा सौंदर्य उसका आंतरिक स्वभाव है जो आत्मा का फल है। परमेश्वर उसको अपनी महिमा के आभूषण दीनता सहनशीलता धीरज भलाई, प्रेम, आनंद तथा शांति पहनाता है। अब परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें उत्तम आटा, मधु और तेल खाने के लिए दिया है। तुम बहुत रूपवान थे और राज्य के रूप में समृद्ध हुए। तुम्हारी सुंदरता अन्य जातियों में प्रतिष्ठा पाती थी। शीबा की रानी दक्षिण से आई कि देखें, और उसने कहा, ओ, मैंने सुना तो था परंतु विश्वास नहीं किया था, परंतु अब मैंने देखा कि तेरे राज्य के वैभव का आधा वर्णन तो मुझसे किया ही नहीं गया था। मैंने तुम्हें आशीष दी, सम्मान दिलाया, समृद्धि प्रदान की और तुम अन्य जातियों में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तुम्हारी महिमा को सुना। परमेश्वर ने कहा कि वो परिपूर्ण थी क्योंकि मैंने तुम में अपना अनुग्रह बसाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर हम में अपने आत्मा द्वारा कार्य करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो हमें यीशु के अनुरूप बनाए। जब हम मसीह के रूप में ढल जाते हैं तब वो कहता है, ओह, तू अति सुंदर है। परमेश्वर आपको मसीह में देखता है और वे जो मसीह में वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब परमेश्वर आपको मसीह में देखता है तब उसे आप में कोई दोष नहीं दिखाई देता है और तब वो कहता है, अति सुंदर। फिर परमेश्वर उनसे कहता है, एहेस्किल अध्याय 16 पद 15, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। वे परमेश्वर से दूर होकर अपने आसपास के सभी देवताओं की पूजा करने लगे थे। परमेश्वर ने कहा, तू मेरी है, मैंने तेरे साथ वाचा बांधी, तुझे मोल लिया, तेरा उद्धार किया। तू तो नाश हो रही थी, तुझे लोगों ने बहिष्कृत कर दिया था, परंतु मैं ही था जिसने तुझे संभाला और बचाया तथा तुझे अपने वैभव प्रदान किया, और तू अब व्यभिचार कर रही है। तू हर एक देवता के पीछे जाती है, तूने वेश्यावृत्ति अपनाई और हर एक राहगीर के साथ कुकर्म किया। एहेस्केल अध्याय 16 पद 16 और 17, तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो ना कभी हुए और ना होंगे। और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। मैंने तुम्हें समृद्धि प्रदान की, मैंने तुम्हें सोना और चांदी दिया, तुमने उसका क्या किया? तुमने उसकी मूर्तियां बनाई, तुमने मेरे ही आशीषों का प्रयोग मुझे क्रोध दिलाने को किया। ये कैसे दुख की बात है कि परमेश्वर मनुष्य को आशीष देता है और मनुष्य परमेश्वर को त्याग कर इस आशीष का दीवाना हो जाता है। एहेस्केल अध्याय 16 पद 18 और 19, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया, और जो भोजन मैंने तुझे दिया था अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था वो सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यूं ही हुआ, तुमने मेरी दिव्य वस्तुओं को ही अपवित्र कर दिया। एहेस्केल अध्याय 16 पद 20 से लेकर 22 तक, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं, और तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि ना ली, जबकि तू नंगी अपने लहू में लौटती थी। उन्होंने अन्य जातियों के देवताओं को अपनाया और उनकी रीतियों पर चलते हुए वे अपने शिशुओं को बाल देवताओं की बाहों में रखकर जलाने लगे कि उनकी बलि दे। परमेश्वर के लोग ऐसा घृणित काम करते थे, अतः यदि परमेश्वर ने उनका नाश किया तो इसमें अचंभे की बात नहीं है। परमेश्वर ने यदि नबूकदनेस्सर को अनुमति दी कि उन्हें भेगर कर दें तो कोई अचंभे की बात नहीं। वे अपनी पुरानी दशा को भूल गए थे। तूने अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि ना ली, जबकि तू नंगी अपने लहू में लौटती थी। एहेस्केल अध्याय 16 पद 23 और 24। और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हाय तुझ पर, हाय कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया। ऊंचे स्थानों में अन्य जातियां अपने देवताओं की उपासना करती थी, जिसमें व्यभिचार एक अभिन्न अंग था। एहेस्केल अध्याय 16 पद 25 से लेकर 27 तक। और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी, और हरेक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे हैं, व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पिलिस्ती स्त्रियां जो तेरे महापाप की चाल से लज्जाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। अतः परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे बैरियों के हाथ में कर देना आरंभ कर दिया है। एहेस्केल अध्याय 16 पद 28 से लेकर 31 तक। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अशूरी लोगों से भी व्यभिचार किया, और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची, और वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। तू तो एक वेश्या से भी गिरी हुई है कि तूने कीमत को भी ठुकरा दिया। एहेस्केल अध्याय 16 पद 32 और 33। तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराये पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझ से व्यभिचार करें। इसराइल मूर्ति पूजा में इतना मग्न हो गया था कि वो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल चुका था। यहां परमेश्वर कह रहा है, मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु वे कैसे निष्ठुर है कि मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। आप अचंभा करेंगे कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया कि आज मसीह समाज में अधिकांश जन दुनिया की पूजा में मगन है। इतवार को हम क्या करते हैं? राग रंग, टीवी कार्यक्रम, घूमना फिरना, टीवी पर धार्मिक चैनल नहीं लगाते हैं, शक्तिमान देखते हैं। कैसे दुख की बात है कि हम उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं जो हमें आशीष देता है और समृद्धि प्रदान करता है। अब हम में और इसराइल में क्या अंतर है? हम में तो इतनी अकल भी नहीं है कि इतिहास से ही सीख ले। अतः परमेश्वर इसराइल की भूल के विषय में और उन पर आने वाले दंड के विषय में कहता है, सबसे पहले वो उनका प्रेमी था, उसने उनकी सृष्टि की। जब उनकी कोई पहचान नहीं थी तब परमेश्वर ने उन्हें महान बनाया, उन्हें सुंदरता प्रदान की और वे अंततः उससे दूर हो गए। एहस्केल अध्याय 16 पद 34 से लेकर 47 तक। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है। इसी कारण तू उल्टी ठहरी। इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यू कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए और अपने बच्चों का लहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी है और जितनों से तूने प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरे तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थरवाह करेंगे और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियां के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद करूंगा और तू फिर छिनाले के लिए दाम ना देगी। और जब मैं तुझ पर पूरी जल जलाहट प्रकट कर चुकूंगा तब तुझ पर और ना जलूंगा, वरन शांत हो जाऊंगा और फिर ना रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप ना करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय ये कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी। और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के वालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहन निकली। तेरी माता हितिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शमरोन है जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी भाई ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दहनी ओर रहती है वो पुत्रियों समेत सदोम है। तो उनकी सी चाल नहीं चली और ना उनके से घृणित कामों ही से संतुष्ट हुई। ये तो बहुत छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। तुम तो समरिया और सदोम से भी अधिक गिरे हुए हैं। एहस्केल अध्याय 16 पद 48 और 49। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों के समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था। सदोम का पाप क्या था? परमेश्वर उनके पाप का मूल कारण देखते हुए कहता है। एहेस्केल अध्याय 16 पद 49 में आगे लिखा है कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सदोम से परमेश्वर को यही शिकायत थी कि वे समृद्धि के कारण घमंड से भर गए थे और निष्क्रिय हो गए थे। गरीब और जरूरतमंदों के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं था। अब जब मनुष्य के पास समय होता है तो वो कुछ न कुछ करने की खोज में लगा रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो लालसाओं से ग्रस्त हो जाता है जो पाप को जन्म देती है। पुरुष एक दूसरे की कामना करने लगे, जिसका प्रमाण हम लूत की कहानी में देखते हैं। जब स्वर्गदूत आकर उसके घर में ठहरे तब वे लूत के पीछे पड़ गए और कहने लगे कि वो उन अतिथियों को बाहर निकाले जिससे कि वे उन्हें जाने, परंतु लूत ने कहा कि वे उन पर कृपा दृष्टि करें और प्रतिकार में उसकी कुंवारी बेटियों को स्वीकार करें। वे कोपित हो उससे कहने लगे, तू परदेशी हमारे मध्य वास करने आया था और आज तू हमारा न्यायी बन बैठा। वे उसे पीटने ही वाले थे कि स्वर्गदूतों ने लूत को भीतर खींचकर उन पर अंधापन डाल दिया। उनके इस आचरण का कारण खोजें तो पता चलेगा कि इसकी जड़ थी उनकी समृद्धि, फालतू समय और निष्क्रियता। जब किसी देश में समलैंगिक संबंधों का खुला प्रदर्शन हो तो जान लो कि वो राष्ट्र नाश होने वाला है और विनाश का कारक है, परमेश्वर के क्रोध का प्याला छलकने पर है। परमेश्वर ने कहा, एहेस्केल अध्याय 16 पद 50 और 51, सो वो गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उसे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपने बहनों को जीत लिया। यही तर्क वितर का विषय है। सबको अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे अपने आप को व्यक्त करे। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अपने नैतिक विचारों को थोप दे। एहेस्केल अध्याय 16 पद 52 से लेकर 59 तक, सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किए हैं, इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी है। सो तू इस बात से लज्जाकर और लज्जाती रहे, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम शमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा, जिससे तू लज्जाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लज्जाए, क्योंकि तो उनकी शांति का ही कारण हुई है। और तेरी बहनें सदोम और शमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी और तू भी अपनी पुत्रियां सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी, जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत आरामी और पिलिस्ती स्त्रियों की, जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती थी, नाम दराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में, तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी ना लेती थी, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा ये कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है। परमेश्वर ने उन्हें अपनाते हुए उनके साथ वाचा बांधी थी, तुम मेरे लोग हो। उन्होंने ये वाचा तोड़ दी और अपने आप को अन्य देवताओं को दे दिया तथा घृणित हो गए। इस कारण परमेश्वर कहता है कि उन्होंने अपनी शपथ का तिरस्कार किया और वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर यहां पुनरुद्धार के दिन की चर्चा करता है, जो सदोम और समरिया के लिए भी है। मेरे विचार में तो वो दिन दूर नहीं है। एहेस्केल की पुस्तक में आगे देखेंगे कि एक भूकंप आएगा और एक नई घाटी बनेगी। यरूशलेम से एक नई नदी का प्रवाह होगा जो मृत सागर में गिरेगी। उसका पानी ऐसा निर्मल जल होगा कि मृत सागर में मछलियों की बहुत अधिक पैदावार होगी और मछियारे एन गेदी में अपने जाल सुखाएंगे। मृत सागर की घाटी जीवंत हो जाएगी। सदोम, समरिया और यरूशलेम के रूप में फूले फलेंगे। एहेस्केल अध्याय 16 पद 60। परमेश्वर ने कहा, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उन्होंने ये सब तो किया, परंतु परमेश्वर ने ना तो उन्हें पूरी तरह से त्यागा है और ना ही उनका सर्वनाश किया। वो उन्हें फिर से अपनाएगा और प्रभु यीशु मसीह में होकर उनके साथ नई वाचा बांधेगा। एहेस्केल अध्याय 16 पद 61 से लेकर 63 तक। और जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु ये तेरी वाचा के अनुसार ना करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह ना खोले। ये उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढापूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।